हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 15 श्लोक संख्या 10 एंड 11। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम् अत्यैव मे विशतो मानसराजहंस। प्राणा प्रयाण समयी कफवात पित्तये कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्व। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटीशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वा मृतुमेतदेव गोविन्द दामो धरमाधवेति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवति मे नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृन्दा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंद अध्याय 15 श्लोक संख्या 10। कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। अर्जुन कह रहे हैं, पत्न्यास्तवादिमक कृप्त ಮಹಾಭಿಷೇಕ ಲಾಗೇಷ್ಟ ಚಾರು ಕವರ ಕಿತ ವೈ ಸಭಾಯಾಂ ಸ್ಪೃಷ್ಟಂ ವಿಕೀರ್ಯ ಪದಯೋ ಪತಿತಾಶು ಮುಖ್ಯಾ ಯಸ್ತಸ್ತ್ರಿಯೋ ಕೃತಹತಿ ಶವಿಮುಕ್ತ ಕೇಶಾ ಪತ್ನ್ಯಾಸ್ತವಾದಿಮುಖ ಕ್ಲಿಪ್ತ ಮಹಾಭಿಷೇಕಶ್ ಲಾಗೇಷ್ಟ ಚಾರು ಕಬರಂ ಕಿತ ವೈ ಸಭಾಯಾಂ ಸ್ಪೃಷ್ಟಂ ವಿಕೀರ್ಯ ಪದಯೋ ಪತಿತಾಶು ಮುಖ್ಯಾ ಯಸ್ತಸ್ತ್ರಿಯೋ ಕೃತಹತಿ ಶವಿಮುಕ್ತ ಕೇಶಾ. ಅರ್ಜುನ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೋ ಕೇ ರಹೆ ಹೈ ಪತ್ನ್ಯಾಸ್ತವಾ ಮತಲಬ್ ಆಪ್ಕಿ ಪತ್ನಿ ಅಭಿ ವೋ ಉನ್ಕಿ ಭಿ ಪತ್ನಿ ಥಿ ದ್ರೌಪದಿ ಲೇಕಿನ್ ಉನ್ಕೋ ಬೋಲ್ ರಹೆ ಅಧಿಮುಖ ವಿಶಾಲ ಯಜ್ಞೋತ್ಸವ ಕೇ ಸಮಯ ಕ್ಲಿಪ್ತ ಜಬ್ ಬಹುತ್ ಬಡಾ ಯಜ್ಞ ಕಿಯಾ ಹುವಾ ಥಾ ಜಬ್ ಇನ್ಹೋನೆ ರಾಜಸೂಯ ಯಜ್ಞ ಕಿಯಾ ಥಾ ತಬ್ ಆಪ್ಕಿ ಪತ್ನಿ ವಹ ಪತ್ನಿ ಜಿಸ್ಕೋ ಅತ್ಯಂತ ಹಿ ಸುಂದರ ವಸ್ತ್ರ ಆಭೂಷಣ ದಿಯೆ ಗಯೆ ಥೆ ಮಹಾಭಿಷೇಕ ಅಚ್ಛಿ ತರಹ ಸೆ ಪವಿತ್ರ ಉನ್ಕೋ ಕಿಯಾ ಗಯಾ ಥಾ ಶ್ಲಾಘಿಷ್ಟ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಹಿಮಾವಾನ್ ವೋ ಬಹುತ್ ಹಿ ಚಾರೋ ಥಿ ಮಹಿಮಾವಾನ್ ಚಾರೋ ಮನ ಸುಂದರ ಥಿ ಕಬರಂ ಯಾನಿ ಬಾಲೋ ಕಿ ಚೋಟಿ ಔರ್ ಉನ್ಕಿ ಜೋ ಬಾಲ್ ಥೆ ಕೇಶ್ ವೋ ಅತ್ಯಂತ ಹಿ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಯೂಂಕಿ ಯೇ ಜೋ ದ್ರೌಪದಿ ಥಿ ವೋ ಕೋಯಿ ಸಾಧಾರಣ ಸ್ತ್ರೀ ನಹೀ ಥಿ ಅಗ್ನಿ ಸೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಹುಯಿ ಥಿ ಯೇ ಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರ ಸ್ತ್ರೀ ಥಿ ಉನ್ಕಾ ಅಂಗ ಅಂಗ ಪವಿತ್ರ ಥಾ ಪರಂತು ಉನ್ಕೆ ಬಹುತ್ ಹಿ ಪವಿತ್ರ ಬಾಲೋ ಕಾ ಅಪಮಾನ ಕಿಯಾ ಗಯಾ ಥಾ ದುಶ್ಯಾಸನ ಭರಿ ಸಭಾ ಮೇ ಉನ್ಕೆ ಬಾಲೋ ಕೋ ಖೀಂಚ ಕರ ಲಾ ರಹಾ ಥಾ ತೋ ವೋ ಬತಾ ರಹೆ ಹೈ ಕಿ ವಹ ಪತ್ನಿ ಜಿಸ್ಕಾ ಮಹಾ ಅಭಿಷೇಕ ಹುವಾ ಜೋ ಬಹುತ್ ಹಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಿ ಸುಂದರ ಥಿ ಮಹಾನ್ ಮಹಿಮಾವಾನ್ ಥಿ ಉಸ್ಕೋ ಭಿ ಕಿತ್ತ ವಯ ದುಷ್ಟೋ ಕೆ ದ್ವಾರ ವೋ ದುಷ್ಟ ದುರ್ಯೋಧನ್ ಓ ದುಶ್ಯಾಸನ್ ಸಭಾಯಾಮ್ ಸ್ಪೃಷ್ಟಂ ಸಭಾ ಮೇ ಉನ್ಕಿ ಚೋಟಿ ಕೋ ಪಕ್ಕಡ ಕೆ ವಿಕೀರ್ಯ ಮತಲಬ್ ಉನ್ಕೋ ಖೋಲಾ ಗಯಾ ಥಾ ಉನ್ಕೆ ಬಾಲೋ ಕೋ ಔರ್ ಪದಯೋ ಯಾನಿ ಪೇರೋ ಪರ್ ಪತಿತಂ ಅಶ್ರು ಮಖಾ ಆಂಖೋ ಮೇ ಅಶ್ರು ಭರ್ಕರ್ ಚರಣೋ ಮೇ ಗಿರಿ ಹುಯಿ ವೋ ಉಸ್ ಸಮಯ ಬಹುತ್ ಜ್ಯಾದಾ ದುಃಖಿ ಹೋ ಗಯಿ ಥಿ ವಹ ತತ್ ಉನ್ಕಿ ಸ್ತ್ರೀಯ ಯಾನಿ ಜೋ ಉನ್ಕಿ ಅಬ್ ಜಿನ್ಹೋನೆ ಏಸಾ ಉಸ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಕಿಯಾ ಉನ್ಕಿ ಪತ್ನಿಯಾ ಅಕೃತ್ ಹತ ಈಶ ಯಾನಿ ಪತಿ ವಿಹೀನ್ ಹೋ ಗಯೆ ಹತ ಈಶ ಈಶ ಕೇತೆ ಪತಿ ಕೋ ಔರ್ ಹತ ಉನ್ ಸಬ್ ಕಿ ಪತ್ನಿಯಾ ಜೋ ಹೈ ಅಪ್ನೆ ಪತಿ ಸೆ ವಿಹೀನ್ ಹೋ ಗಯಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಸಬ್ ವಿಧವಾ ಹೋ ಗಯಿ ಔರ್ ವಿಮುಕ್ತ ಕೇಶ ಔರ್ ಸಬ್ ಕಿ ಕೇಶ ಖುಲ್ ಗಯಿ ಯಾನಿ ಕಿ ಸಾರೋ ಕಾ ಅಪಮಾನ ಹುವಾ ಸಾರಿ ಸಬ್ ಕಿ ಪತ್ನಿಯಾ ಜಿನ್ ಜಿನ್ ನೇ ದ್ರೌಪದಿ ಕಾ ಅಪಮಾನ ಕಿಯಾ ಥಾ ಉನ್ ಸಬ್ ಕಿ ಪತ್ನಿಯಾ ವಿಧವಾ ಹೋ ಗಯಿ ಔರ್ ಉನ್ ಸಬ್ ಕಿ ಕೇಶ ಖುಲ್ ಗಯೆ ಯಾನಿ ಪೆಹಲೇ ಜಮಾನೆ ಮೇ ಕ್ಯಾ ಹೋತಾ ಥಾ ವಿಧವಾ ಕೋ ಶೃಂಗಾರ ಕರ್ನೆ ಕಾ ನಹೀ ಹೋತಾ ಯೇ ಬಹುತ್ ಬಡಾ ಶೃಂಗಾರ ಹೈ ವಾಸ್ತವ ಮೇ ಚೋಟಿ ಬನಾ ಕೆ ನಿಕಲ್ತೆ ಹೈ ಬಾಲ್ ಬನಾ ಕೆ ನಿಕಲ್ತೆ ನಾ ಆಜಕಲ್ ಕಿ ಲಡ್ಕಿಯಾ ಸಮಜ್ತಿ ನಹೀ ಹೈ ಬಾಲ್ ಖೋಲ್ ಖೋಲ್ ಕರ್ ಜಾತೆ ಹೈ ಲೇಕಿನ್ ವಾಸ್ತವ ಮೇ ಐಸಾ ಬತಾಯಾ ಜಾತಾ ಹೈ ಸಂತ ಜನ ಬತಾತೆ ಹೈ ಕಿ ಯೇ ಶೃಂಗಾರ ಹೋತಾ ಹೈ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಕಾ ಕಿ ಬಾಲ್ ಬನಾ ಕೆ ನಿಕಲೆ ತೋ ದ್ರೌಪದಿ ಜೋ ಕಿ ಹಮೇಶಾ ಬಾಲ್ ಬನಾ ಕೆ ನಿಕಲ್ತಿ ಥಿ ಬಹುತ್ ಹಿ ಸುಂದರ ಬಹುತ್ ಹಿ ಪವಿತ್ರ ಸ್ತ್ರೀ ಥಿ ಲೇಕಿನ್ ಉನ್ಕಾ ಅಪಮಾನ ಹುವಾ ಥಾ ಕುರುವೋ ಕಿ ಸಭಾ ಮೇ ಔರ್ ಇಸ್ ಅಪಮಾನ ಕೆ ಕಾರಣ ಸಬ್ ಜಿತ್ನಿ ಭಿ ಕುರುವಂಶ ಕಿ ದೂಸರಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾ ಥಿ ಉನ್ ಸಬ್ಕೆ ಪತಿ ಪತಿಯೋ ಕಿ ಮೃತ್ಯು ಹೋ ಗಯಿ ಔರ್ ಉನ್ಕೆ ಬಾಲ್ ಖೋಲ್ ದಿಯೆ ಗಯೆ ಅನುವಾದ ದೇಖಿಯೇ ಯೇ ಸಬ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಿ ಕೃಪಾ ದಿ ಯಹಿ ಬತಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕೇತೆ ಹೈ ಉನ್ಹೋನೆ ಹಿ ಉನ್ ದುಷ್ಟೋ ಕಿ ಪತ್ನಿಯೋ ಕೆ ಬಾಲ್ ಖೋಲ್ ದಿಯೆ ಜಿನ್ಹೋನೆ ಆಪ್ ಕಿ ಮಹಾರಾಣಿ ದ್ರೌಪದಿ ಕಿ ಉಸ್ ಚೋಟಿ ಕೋ ಖೋಲ್ನೆ ಕಾ ದುಸ್ಸಾಹಸ ಕಿಯಾ ಥಾ ಜೋ ಮಹಾನ್ ರಾಜಸೂಯ ಯಜ್ಞ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕೆ ಅವಸರ ಪರ್ ಸುಂದರ ಢಂಗ ಸೆ ಸಜಾಯಿ ತಥಾ ಪವಿತ್ರ ಕಿ ಗಯಿ ಥಿ ಉಸ್ ಸಮಯ ವಹ ಅಪ್ನಿ ಆಂಖೋ ಮೇ ಆಂಸೂ ಭರ ಕರ್ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೆ ಚರಣೋ ಪರ್ ಗಿರ್ ಪಡಿ ಥಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಜಿ ಬಹುತ್ ಸುಂದರ ರೀತಿ ಸೆ ಸಮಝಾ ರಹೆ ಹೈ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ದ್ವಾರ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಚರ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಜಿ ಕೇತೆ ರಾಣಿ ದ್ರೌಪದಿ ಕಿ ಚೋಟಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಥಿ ಜಿಸೆ ರಾಜಸೂಯ ಯಜ್ಞ ಕೆ ಅವಸರ ಪರ पवित्र किया गया था, किंतु जब वे दाव में हारी जा चुकी थी तो दुशासन ने उनके महिमा मंडित केशों को छूकर उनका अपमान किया था। तब द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर गिर पड़ी। अतः भगवान श्री कृष्ण ने निश्चय किया कि वे कुरुक्षेत्र के युद्ध के फलस्वरूप दुशासन तथा उसके दल वालों की सारी पत्नियों के केश खुलवा कर रहेंगे। इस प्रकार कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात जब धृतराष्ट्र के सारे पुत्र तथा पौत्र मारे जा चुके थे तो परिवार की सारी स्त्रियों को विधवाओं के रूप में केश खोलने पड़े। दूसरे शब्दों में दुशासन द्वारा भगवान के परम भक्त का अपमान किए जाने से कुरुवंश की सारी स्त्रियां विधवा हो गईं। भगवान भले ही अपने ऊपर किसी दृष्टि द्वारा किए गए अपमान को सह लें, क्योंकि पिता अपने पुत्र के द्वारा किए गए अपमानों को सह लेता है, किंतु वे अपने भक्तों का अपमान कभी नहीं सह सकते। महापुरुष का अपमान करने पर मनुष्य को अपने सारे पुण्यों तथा वरों की बलि देनी पड़ती है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि अगर किसी भक्त का अपमान हो जाता है ना, तो भगवान उसका बदला देने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हमें सदैव सावधान रहना चाहिए। पहला अपराध ये है कि भक्तों की निंदा नहीं करनी चाहिए, भक्तों का सदैव सम्मान करना चाहिए। और महाप्रभु ने तो यहाँ तक कह दिया कि यदि आप भक्तों का सम्मान नहीं करते हो, अमानी न मान देना, यदि आप इस स्टेज पर नहीं पहुँचते हो तब आप कभी सोचना भी नहीं कि आप भगवान के पवित्र नाम का कंटिन्यूस कीर्तन। कोई लोग कैसे ना कि बस अभी हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते ना, अभी जरूरी थोड़ी हर किसी का सम्मान करते रहे, हर किसी को मान लेते रहे। नहीं, जरूरी है, क्योंकि हमारा लक्ष्य भले ही सदैव भगवान का कीर्तन करना है, लेकिन उसके लिए ये रूल है कि हमें सहनशु बनना है, हमें मान की इच्छा नहीं करनी है और अपमान सहने के लिए तैयार रहना है। और दूसरे जितने भी भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, हम किसी को ये नहीं कह सकते कि ये अच्छा भक्त नहीं है, वो अपने हिसाब से भगवान की और उसके बीच की बात है। लेकिन हमें सबका सम्मान करना चाहिए, भक्तों का सम्मान करना चाहिए। भगवान उस व्यक्ति को कभी भी माफ नहीं करते जो भक्तों का अपमान करते हैं या किसी प्रकार से भक्तों का दिल दुखाते हैं। तो हमें सदैव सावधान रहना चाहिए। आगे अर्जुन कहते हैं श्लोक नंबर 11 में, यो नो जुगो पवन एत्य दुरंत कृच्छ्रात् दुर्वाससोरि रचिता दयुताग्रभुयः शाकान्न शिष्ट मोपयुज्य यतस्त्रिलोकीं तृप्तामस्त सलिले विनिमग्न संगः। यो नो जुगो पवन एत्य दुरंत कृच्छ्रात् दुर्वाससोरि रचिता दयुताग्रभुक्यः शाकान्न शिष्टमुपयुज्य यत स्त्रीलोकीं तृप्तामस्त सलिले विनिमग्न संगः। शब्दार्थ, योनो जुगोप, यो मतलब वही कृष्ण ही तो है, ये वही कृष्ण ही थे जिन्होंने हमको, नो मन हमको जुगोप, हमको सदैव संरक्षण प्रदान की, सदैव हमारी सुरक्षा की। और उस समय वन एत, जब हम वन में थे उस समय दुरंत कृच्छ्रात् बहुत भयानक संकट आ गया था हमारे पास जब हम वन में थे। दुर्वाससो अरी अरी कहते हैं शत्रु को, और रचिता मतलब इन्होंने एक प्लान किया था, जो हमारे शत्रु दुर्योधन इत्यादि ने उन्होंने एक प्लान बनाया था। और आयुत का मतलब होता है 10,000 अग्रभु, जो अकेले नहीं खाते थे, हमेशा अपने 10,000 शिष्यों के साथ ही खाते थे। उन दुर्वासा मुनि को भयानक संकट के रूप में हमारे पास भेज दिया था जब हम वन में थे, जब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। उस समय दुर्वासा मुनि आ गए और उस समय अगर कृष्ण ना होता तो फिर क्या होता, हम सब वहीं पर भस्म हो गए होते दुर्वासा मुनि के श्राप से। लेकिन कृष्ण ने क्या किया, शाकान शिष्टम उपयुज्य, शाकान शिष्ट मतलब बिल्कुल बचा हुआ एक छोटा सा जूठन जो सबने खाना खा लिया था, भोजन खा लिया था, थोड़ा सा जरा सा उसमें अक्षय पात्र में जरा सा पड़ा हुआ था, उसको भगवान ने ग्रहण किया उपयुज्य। ये भगवान है कितने कृपालु हैं, हम सोच भी नहीं सकते। कोई साधारण व्यक्ति भी हमारे घर पे मेहमान आएगा तो उसको जब पूरा घर खा लेगा, उस तेगर्शी में एक छोटा सा अनाज का दाना होगा उसको हम कभी देंगे, हम बोलेंगे नहीं अभी इसको खिए कैसे, लेकिन वो त्रिलोकी के नाथ है, वो छोटा सा जूठन सारे पांडवों ने खा लिया था, द्रौपदी ने भी खा लिया था, लेकिन शाकान शिष्टम उपयुज्य, वो छोटा सा बचा हुआ भोजन भी भगवान ने स्वीकार किया, यह त्रिलोकीम तृप्त, और उससे क्या हुआ, सारे तीनों लोकों को तृप्त कर दिया। ये भगवान है इनको तृप्त कर दे, तीनों लोक संतुष्ट हो जाते हैं। अमस्तम मतलब, और जब सारे संतुष्ट हो गए तीनों लोग, तो दुर्वासा मुनि और उसके 10,000 शिष्य भी संतुष्ट हो गए, फिर क्या हुआ, अमस्तम सलिले विनिमग्न संग, विनिमग्न संग मतलब वो सारे जल में गए थे ना स्नान करने के लिए, तो फिर वहीं पर सारे संतुष्ट हो गए, और फिर वो ये सोच रहे थे कि अभी हम कैसे बचे, क्योंकि हमारा पेट तो भर गया है, कुछ भी अब अंदर जाएगा नहीं। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से इस कहानी को सुनाएंगे, अनुवाद देखिए। हमारे वनवास के समय 10,000 शिष्यों के साथ भोजन करने वाले दुर्वासा मुनि ने हमें भयावह संकट में डालने के लिए हमारे शत्रुओं के साथ मिलकर चाल चली। उस समय कृष्ण ने केवल जूठन ग्रहण करके हमें बचाया था। इस तरह उनके भोजन ग्रहण करने से नदी में स्नान करती मुनि मंडली ने अनुभव किया कि वह भोजन से पूर्णतः संतुष्ट हो गए और तीनों लोक भी संतुष्ट हो गए। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं बहुत ही सुंदर रीति से, श्रील प्रभुपाद जी पूरा दृष्टांत देंगे। ऐसे कहते हैं कभी कभी संत जन कि मैं बोल रहा हूँ आप डूबो। श्री प्रभुपाद जी का तात्पर्य सुनकर ऐसा ही लगता है कि बस डूब जाएं, कुछ नहीं करना है, केवल श्रवण करना है, सारा का सारा रस जो होता है वो श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में डालते हैं और हम उसका रसास्वादन करते हैं। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, दुर्वासा मुनि ये शक्तिशाली योगी ब्राह्मण थे जिन्होंने कठिन तपस्या तथा व्रत के द्वारा धर्म की नियमों का पालन करने का संकल्प किया था। उनका नाम अनेक ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ा हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें शिवजी की भांति सरलता से प्रसन्न किया जा सकता था तथा सरलता से रुष्ट किया जा सकता था। प्रसन्न होने पर वे सेवक का अपार शुभ करते थे और अप्रसन्न होने पर महान संकट उत्पन्न कर देते थे। कुमारी कुंती अपने पिता के घर में सभी ब्राह्मणों की सेवा किया करती थी और उनके सत्कार से प्रसन्न होकर दुर्वासा मुनि ने उन्हें ऐसी शक्ति का वर दिया कि जिससे वे इच्छित देवता का आवाहन कर सकती थी। ऐसा माना जाता है कि वे शिव जी के अंशावतार थे, अतएव वे शीघ्र ही प्रसन्न या रुष्ट किए जा सकते थे। वे शिव के परम भक्त थे और उन्हीं के आदेश से उन्होंने श्वेत केतु का पुरोहित बनना स्वीकार किया था, क्योंकि श्वेत केतु 100 वर्षों तक यज्ञ कर चुका था। वे कभी कभी इंद्रदेव की स्वर्ग सभा में भी जाया करते थे। ऐसा समझा जाता था कि वे अपनी योग शक्ति से आकाश में विचरण कर सकते थे और वे वैकुंठ लोक तक विचरण कर चुके थे। उन्होंने इतनी लंबी दूरी 1 वर्ष में तब तय की थी जब उन्होंने चक्रवर्ती सम्राट एवं परम भक्त राजा अम्बरीश से झगड़ा किया था। उनके 10,000 शिष्य थे और वे जहाँ कहीं भी जाते थे, जिन क्षत्रिय राजाओं के अतिथि बनते, वहीं अपने बहुत से शिष्यों को साथ ले जाते थे। एक बार वे राजा युधिष्ठिर के शत्रु भ्राता दुर्योधन के घर गए। दुर्योधन अत्यंत बुद्धिमान था, अतएव उसने सभी प्रकार से इस ब्राह्मण को संतुष्ट किया। इस पर इस महर्षि ने दुर्योधन को वरदान देना चाहा। दुर्योधन इनकी योग शक्ति से परिचित था और उसे यह भी पता था कि अप्रसन्न होने पर किसी प्रकार ये भवंडर खड़ा कर सकते हैं। अतएव उसने ऐसी चाल चली कि यह ब्राह्मण अपना क्रोध उनके शत्रु पांडवों पर उतारे। अतएव जब ऋषि ने दुर्योधन को वर देना चाहा, तो उसने कहा कि अच्छा हो यदि श्रीमान हमारे अग्रज तथा प्रमुख महाराज युधिष्ठिर के घर जाएं, लेकिन आप तब पहुंचे जब युधिष्ठिर अपनी महारानी द्रौपदी के साथ भोजन कर चुके हों। दुर्योधन जानता था कि द्रौपदी के साथ भोजन करने के बाद महाराज युधिष्ठिर इतने सारे ब्राह्मण अतिथियों को भोजन नहीं दे पाएंगे और तब यह ऋषि क्रुद्धित होकर महाराज युधिष्ठिर के लिए संकट उत्पन्न कर देगा। यह थी दुर्योधन की योजना। दुर्वासा मुनि ने उसके प्रस्ताव को मान लिया और दुर्योधन की योजना के अनुसार ही वनवासी राजा के यहाँ उस समय पहुँचे जब राजा तथा द्रौपदी भोजन कर चुके थे। महाराज युधिष्ठिर के द्वार पर पहुँचते ही दुर्वासा ऋषि का स्वागत किया गया और राजा ने उनसे प्रार्थना की कि वे दोपहर का धार्मिक कृत्य नदी के किनारे संपन्न करें, तब तक भोजन तैयार हो जाएगा। दुर्वासा अपने अनेक शिष्यों सहित नदी में स्नान करने गए और महाराज युधिष्ठिर इन अतिथियों के कारण चिंता करने लगे। जब तक द्रौपदी नहीं खाती थी, तब तक चाहे कितने ही अतिथि क्यों न आ जाएं, उन्हें भोजन दिया जा सकता था। किंतु ऋषि तो दुर्योधन की योजना के अनुसार उस समय पहुंचे थे जब द्रौपदी भोजन कर चुकी थी। जब भक्तगण कठिनाई में होते हैं तो वे ध्यान मग्न होकर भगवान का स्मरण करते हैं। अतएव द्रौपदी उस विषम स्थिति में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर रही थी और सर्वव्यापी भगवान तुरंत ही अपने भक्तों की कठिन स्थिति को समझने वाले हैं। अतः वे वहाँ पर उपस्थित हुए और द्रौपदी से कहा कि जितना भी भोजन बचा है उसे वे ले आए। भगवान की बात सुनकर द्रौपदी अत्यंत खिन्न हुई, क्योंकि भोजन तो था ही नहीं और भगवान भोजन मांग रहे थे। उन्होंने भगवान से कहा कि यदि वे खा न चुकी होती तो सूर्य द्वारा प्रदत्त रहस्यमय थाली से वे कितना ही भोजन दे सकती थी, किंतु उस दिन वे भोजन कर चुकी थी, अतएव अब संकट उपस्थित था। वे अपनी कठिनाइयां बताकर कृष्ण के समक्ष रोने लगी, जैसा कि ऐसे अवसरों पर स्त्रियां करती हैं। किंतु भगवान ने द्रौपदी से रसोई के पात्र लाने को कहा, जिससे वे देख सकें कि उसमें कहीं भोजन का कोई कण लगा तो नहीं रह गया। द्रौपदी के ऐसा करने पर भगवान ने देखा कि पात्र में शाक का एक कण लगा हुआ है। भगवान ने उसे निकाल कर तत्क्षण खा लिया। इसके बाद भगवान ने द्रौपदी से कहा कि दुर्वासा समेत सारे अतिथियों को बुलाइए, मतलब अब उनको बुलाओ, खाना खिलाते हैं। भीम को नदी तट से उन सबों को बुला लाने के लिए भेजा गया। भीम ने कहा, महोदय आप क्यों विलंब कर रहे हैं, आइए भोजन तैयार है। किंतु भगवान कृष्ण ने भोजन का एक कण ग्रहण कर लिया था, अतएव नदी में स्नान करते समय अतिथियों का भी पेट भर चुका था। अतएव उन्होंने सोचा कि महाराज युधिष्ठिर ने उन सबों के लिए नाना प्रकार के व्यंजन तैयार कराए होंगे और चूंकि उन्हें भूख नहीं लग रही थी और वे खा नहीं सकेंगे तो महाराज युधिष्ठिर को दुख होगा। अतएव श्रेष्कर्ष यही होगा कि वे वहां से वहां पर जाए ही नहीं। इसलिए उन सबों ने चले जाने का निश्चय किया। यह घटना सिद्ध करती है कि भगवान सर्वोच्च योगी हैं, अतएव वे योगेश्वर कहलाते हैं। दूसरी शिक्षा यह मिलती है कि प्रत्येक ग्रस्त को चाहिए कि भगवान को भोजन भेंट करें। इसका फल यह होगा कि हर व्यक्ति संतुष्ट हो जाएगा, भले ही 10,000 अतिथि क्यों न हो, क्योंकि भगवान संतुष्ट हैं। यही भक्ति की विधि है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। अर्जुन भगवान के उन सब कृपाओं को याद कर रहे हैं कि हमें जब जब संकट आया तो भगवान की कृपा से हम उस संकट को पार हो गए, क्योंकि शुद्ध भक्त यही। श्री प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर यहाँ पर तात्पर्य में हमें बात बताई कि जब शुद्ध भक्त के ऊपर कठिनाई आती है, दुख आता है, संकट आता है, तो भगवान को स्मरण करते हैं, और जब भगवान देखते हैं कि मेरा भक्त मेरा स्मरण कर रहा है, तो भगवान तो सर्वव्यापी है, वो तुरंत अपने भक्तों की कठिनाई को दूर करने के लिए आ जाते हैं। तो हमें हर समय भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वो अवश्य आएंगे हम सबकी रक्षा करने के लिए। संसार की कोई ताकत ऐसी नहीं है जिस उसे भगवान निपट ना सकें, कोई दुख ऐसा नहीं है, कोई कठिनाई ऐसी नहीं है। तो हमेशा भगवान का स्मरण करें और भगवान की सुरक्षा का अनुभव करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया साथ रहिएगा, मेहरबानी कीजिए, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं। हरे कृष्ण।